ये रेडियो नेपाल है। अब रमिता यादव से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। सरकार द्वारा हाल ही में जारी किए गए अध्यादेशों को फास्ट ट्रैक के माध्यम से पारित करने का मंत्रिपरिषद बैठक का निर्णय, शीतकालीन अधिवेशन को प्रभावी बनाने में भूमिका निभाने का अपने सांसदों को निकपाय माले का निर्देश, राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल द्वारा दीप प्रज्वलन कर सोनम लोसार का किया गया शुभारंभ और भारत के उत्तर प्रदेश के बागपत महोत्सव में लकड़ी का बना मचान गिरने से हुई 5 लोगों की मौत। अब समाचार विस्तार से। सरकार द्वारा जारी किए गए अध्यादेश को फास्ट ट्रैक प्रक्रिया के माध्यम से पारित करने का सरकार ने निर्णय किया है। आज हुई मंत्रिपरिषद की बैठक के बाद सरकार के प्रवक्ता एवं संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री पृथ्वी सुब्बा गुरुंग ने बताया कि राष्ट्रपति द्वारा हाल ही में जारी किए गए अध्यादेश के क्रियान्वयन के लिए नियमावली तैयार की जा रही है। माघ 18 से शुरू होने वाले संसद के शीतकालीन अधिवेशन के पहले दिन ही सरकार द्वारा हाल ही में जारी किए गए अध्यादेश को संसद में पेश करने की तैयारी की गई है। बैठक में शहीद सप्ताह के अंतिम दिन कल शहीद दिवस विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन कर मनाने का भी निर्णय किया गया। नेकपा एमाले ने आगामी शीतकालीन संसदीय सत्र को प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए अपने सांसदों को विशेष निर्देश जारी किए हैं। आज नया वानेश्वर स्थित संसद भवन में आयोजित संसदीय दल की बैठक में ये निर्णय किया गया। बैठक में तय किया गया कि माघ 18 गति से शुरू होने वाले सत्र को सफल बनाने के लिए पार्टी की ओर से दोनों सदनों के सांसद सक्रिय भूमिका निभाएंगे। प्रतिनिधि सभा में पार्टी के मुख्य सचेतक महेश बरतोला ने बताया कि सत्र को प्रभावकारी बनाने के लिए सभी सांसदों को सक्रिय रूप से भाग लेने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने कहा कि नेपाली कांग्रेस और एमाले के संयुक्त प्रयास के बाद अध्यादेश लाया गया है और इसे संसद के माध्यम से पारित किया जाएगा। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा कि सरकार द्वारा लाए गए अध्यादेश को सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली है और सरकार देश को उन्नत स्तर पर ले जाने के प्रयास में आगे बढ़ रही है। आज हुई नेकपा एमाले की संसदीय दल की बैठक में प्रधानमंत्री ओली ने कहा कि युवाओं को देश में काम करने के लिए उचित माहौल देने, जनता की सेवा में प्रभावकारिता लाने और उद्योग व्यवसाय संचालन के लिए सहज वातावरण बनाने के लिए अध्यादेश लाया गया है। प्रधानमंत्री एमाले पार्टी के अध्यक्ष ओली ने कहा कि अध्यादेश से 29 कानूनों में संशोधन किया गया है और जल्द ही प्रतिस्थापन विधेयक लाकर स्थायी कानून बनाया जाएगा और प्रभावी क्रियान्वयन किया जाएगा। प्रतिनिधि सभा कार्य व्यवस्था परामर्श समिति ने आगामी शुक्रवार को होने वाली प्रतिनिधि सभा बैठक की कार्यसूची निर्धारित की है। आज सभामुख देवराज खिमिरे की अध्यक्षता में हुई समिति की बैठक ने संभावित कार्यसूची निर्धारित की है। सूची के मुताबिक अधिवेशन के पहले दिन सहकारी संबंधी कुछ नेपाल आयनों को संशोधित करने वाला अध्यादेश 2081 सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाह संबंधी कुछ नेपाल आयनों को संशोधित करने वाला अध्यादेश 2081 आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व प्रथम संशोधन अध्यादेश 2081 आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार और निवेश अभिवृद्धि संबंधी कुछ नेपाल आयनों को संशोधित करने वाला अध्यादेश 2081 और भूमि संबंधी कुछ नेपाल आयनों को संशोधन करने वाला अध्यादेश 2081 प्रतिनिधि सभा में पेश होंगे। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्रालय ने सामाजिक संजाल संचालन प्रयोग तथा नियमन करने संबंधी विधेयक संघीय संसद में पेश किया है। इसी माह 7 गति हुई मंत्रिपरिषद की बैठक द्वारा किए गए निर्णय के मुताबिक विधेयक संसद में पेश किया गया। समाजवादी मोर्चा नेपाल के नेताओं ने कहा कि सहभागी दलों के बीच पर्याप्त विचार विमर्श करने और विचार तथा कार्यक्रम में एकरूपता आने के बाद ही पार्टी एकता में प्रवेश किया जाना चाहिए। समाजवादी मोर्चा द्वारा आज काठमांडू में आयोजित विचार सभा को संबोधित करते हुए मोर्चा में शामिल दलों के शीर्ष नेताओं ने कहा कि पार्टी एकता को सार्थक बनाने के लिए दलों के बीच पर्याप्त विचार विमर्श होना चाहिए। उन्होंने कहा कि पार्टी एकता न होने तक मोर्चा को सक्रिय लिए बनाया जाना चाहिए। सभा में नेकपा माओवादी केंद्र के अध्यक्ष पुष्प कमल दहाल प्रचंड ने कहा कि समाजवादी मोर्चा को एक नई वैकल्पिक राजनीतिक शक्ति के रूप में स्थापित करने के लिए मोर्चा में शामिल दलों को अपने अपने दल को सक्रिय और लोकप्रिय बनाना चाहिए। अध्यक्ष प्रचंड ने कहा कि मोर्चा में विचार मिलने वाले अन्य राजनीतिक दलों को भी शामिल करते हुए आगे बढ़ाया जाना चाहिए। कार्यक्रम में नेकपा एकीकृत समाजवादी के अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल ने कहा कि शासन प्रणाली, चुनाव प्रणाली और समाजवाद के लक्ष्य तक पहुंचने के मार्ग चित्र के बारे में मोर्चा में शामिल दलों के बीच पर्याप्त विचार विमर्श होने पर ही पार्टी एकता सार्थक होगी। इसी कार्यक्रम में नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की महासचिव नेत्र विक्रम चंद विप्लव, नेपाल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष महेन्द्र राय यादव सहित अन्य नेताओं ने कहा कि नेपाली जनता की इच्छा और आकांक्षाओं को संबोधित करने वाले नए राजनीतिक विचार के साथ एक वैकल्पिक शक्ति के रूप में समाजवादी मोर्चा को सक्रिय बनाया जाना चाहिए। आप रेडियो नेपाल से हिंदी समाचार सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाई कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ला, तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटीसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारू गर्नका लागि #1415# गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको सञ्चार।
अब बाकी समाचार। राष्ट्रपति रामचंद्र पौड़ेल ने कहा कि नेपाल में सभी जात जातियों की अपनी अलग अलग परंपराएं, रीति रिवाज और संस्कृतियां हैं और इनका संरक्षण किया जाना चाहिए। आज राष्ट्रपति भवन शीतल निवास में दीप प्रज्वलित कर सोनाम लोछार का शुभारंभ करते हुए राष्ट्रपति पौड़ेल ने ये बात कही। सूर्य दर्शन बचत तथा ऋण सहकारी ठगी प्रकरण में उच्च अदालत पोखरा ने राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी के सभापति रवि लामिछाने का कैफियत प्रतिवेदन पेश करने का आदेश किया है। न्यायाधीश मिलन कुमार राय की एकलपीठ ने आज जिला अदालत कास्की के कैफियत प्रतिवेदन मंगवाने का आदेश किया है। बता दें कि खुद को 65 लाख रुपए की जमानत पर रिहा करने के आदेश के विरुद्ध लामिछाने ने कल उच्च अदालत में याचिका दर्ज की थी। उन्होंने अपनी याचिका में सूर्यदर्शन सहकारी मामले में जिला अदालत के जमानत के तौर पर इतनी रकम की मांग के आदेश को अनुचित बताया है। ऊर्जा के विकास को समावेशी, दीर्घ और न्यून कार्बन अर्थतंत्र का आधार बनाकर आगे बढ़ने को विज्ञों ने जरूरी बताया है। अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ ऊर्जा दिवस के अवसर पर वैकल्पिक ऊर्जा प्रबंधन केंद्र द्वारा काठमांडू में आयोजित दीर्घ और न्यून कार्बन अर्थतंत्र के लिए ऊर्जा रूपांतरण सम्मेलन में विज्ञों ने ये बात कही। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्री प्रदीप पौड़ेल ने कहा कि स्वास्थ्य सेवा आईन में नर्सिंग पेशे के पेशेवर अधिकारों और हितों को शामिल किया जाएगा। काठमांडू में आज संपन्न नेपाल नर्सिंग संघ के 63वें वार्षिकोत्सव के अवसर पर मंत्री पौड़ेल ने कहा कि नर्सिंग कर्मचारियों के पलायन को रोकने के लिए सुविधाएं बढ़ाई जाएंगी, सुरक्षित वातावरण में काम करने का अवसर प्रदान किया जाएगा, अच्छा काम करने वालों को प्रोत्साहित और पुरस्कृत किया जाएगा और व्यक्तिगत विकास पर ध्यान देते हुए काम करने का माहौल तैयार किया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि पदोन्नति व्यक्तिगत संपर्क के आधार पर नहीं बल्कि नियमों के आधार पर होनी चाहिए। वहीं नर्सिंग संघ के अध्यक्ष चंद्रकला शर्मा ने कहा कि नर्स जैसे तकनीकी कर्मचारियों को दैनिक मजदूरी पर काम करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। उन्होंने मौद्रिक और गैर मौद्रिक सेवा सुविधाओं में वृद्धि करने की मांग की। सरकार ने इसी माह 22 गति से फागुन 6 गति तक देश भर में सर्वाइकल कैंसर विरुद्ध के HPV टीका अभियान संचालन करने जा रही है। 10 से 14 वर्ष के उम्र समूह की किशोरी और कक्षा 6 से 10 तक के सभी विद्यार्थी छात्रों को टीका दी जाएगी। प्रतिनिधि सभा अर्थ समिति के पदाधिकारियों ने धनुषा तथा महोत्तरी जिलों में रहे भंसार कार्यालय तथा सीमा नाके का आज स्थलगत रूप में निरीक्षण किया है। समिति के सभापति संतोष चालीसे नेतृत्व की टोली ने धनुषा जिले के जट्ठी स्थित छोटी भंसार तथा महोत्तरी जिले के जलेश्वर भंसार कार्यालय का स्थलगत निरीक्षण किया। शहीद सप्ताह अंतर्गत गंगालाल श्रेष्ठ और दशरथ चंद प्रति आज भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की गई। उन लोगों को अमरत्व प्राप्त हुए शुभावक्त भगवती में काठमांडू महानगर पालिका द्वारा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया था। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारत के उत्तर प्रदेश में बागपत के बड़ौत में जैन समुदाय के लड्डू महोत्सव के दौरान लकड़ी का बना मचान गिरने से 5 लोगों की मौत हो गई है। बागपत की डीएम अस्मिता लाल ने 5 लोगों की मौत की पुष्टि की है। उन्होंने बताया कि 20 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। बड़ौत में भगवान आदिनाथ के लड्डू पर्व महोत्सव पर मान स्तंभ परिसर में बना लकड़ी का मचान ढहने से 50 से अधिक श्रद्धालु दब गए थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने घायलों के समुचित उपचार के निर्देश दिए हैं। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 18 से 20 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 6 से 8 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 19.8 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 6.3 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। सरकार द्वारा हाल ही में जारी किए गए अध्यादेशों को फास्ट ट्रैक के माध्यम से पारित करने का मंत्रिपरिषद बैठक का निर्णय शीतकालीन अधिवेशन को प्रभावी बनाने में भूमिका निभाने का अपने सांसदों को निकपाय माले का निर्देश। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल द्वारा दीप प्रज्वलन कर सोनम लोछार का किया गया शुभारंभ और भारत के उत्तर प्रदेश के बागपत महोत्सव के दौरान लकड़ी का बना मचान गिरने से हुई 5 लोगों की मौत। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिन्दी समाचार समाप्त हुए। 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।